एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने आते ही दुनिया भर के पाठकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पॉला हॉकिंस की लिखी द गर्ल ऑन द ट्रेन।
हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी चली थी।
हॉकिंस जो पहले पत्रकार थीं, इस किताब से उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की दुनिया में मतलब एक जबरदस्त एंट्री की। उनकी खासियत है रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे छिपे अंधेरों को कुरेदना, खासकर मानवीय हिस्सों की उलझनों और मनोवैज्ञानिक दबावों को सामने लाना।
सही कहा, और उनका तरीका भी अलग है। वो अक्सर ऐसी आवाजों का इस्तेमाल करती हैं जिन मतलब ऐसे नरेटर्स जिन पे आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते।
हाँ, अविश्वसनीय नैरेटर्स, बिल्कुल। तो ये किताब 2015 में आई और आते ही बेस्ट सेलर चार्ट्स पर छा गई। कई लोगों ने इसकी तुलना जिलियन फ्लिन की गॉन गर्ल से भी की थी।
हाँ हाँ, वो तुलना तो हुई थी। इसने वो जो डोमेस्टिक नॉयर है ना, मतलब घर के अंदर का सस्पेंस, उस जॉनरा को काफी मजबूती दी।
बिल्कुल, जहां सब सुरक्षित दिखता है पर होता नहीं है। ये उस दौर में आई जब महिला किरदारों पर केंद्रित मनोवैज्ञानिक सस्पेंस की मांग बढ़ रही थी।
सही, जो घरेलू जीवन की असहज सच्चाइयों को दिखाए।
तो आज हम इसी उपन्यास की जटिल कहानी, इसके किरदारों के सफर और वो जो गहरे सवाल हैं जो ये किताब उठाती है, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे।
जरूर। तो कहानी की जो धुरी है वो है रेचल वॉटसन, एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी कह सकते हैं कि पटरी से उतर चुकी है।
हाँ,
तलाक हो चुका है, शराब की बुरी लत है और नौकरी भी चली गई है। पर ये बात वो अपनी फ्लैटमेट मतलब जिसके साथ वो रहती है उससे छुपाती है।
अच्छा, छुपाती है, क्यों?
हाँ, ताकि लगे कि सब ठीक है। रोज सुबह तैयार होकर लंदन जाने वाली ट्रेन पकड़ती है, जैसे ऑफिस जा रही हो। ये सफर ही उसके टूटे जीवन का एक तरह का सिंबल बन जाता है।
ओह, ये तो काफी दुखद है।
हाँ, और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखना उसकी आदत है, एक तरह की क्या कहते हैं वॉयरिज्म, ताक झांक। पटरियों के किनारे जो घर हैं उनमें रहने वालों की जिंदगियों के बारे में वो कल्पना करती है, और खासकर एक जोड़े पर उसका ध्यान अटक जाता है।
अच्छा, कौन?
वो उन्हें मनी मन जेस और जेसन बुलाती है। असली नाम है मेगन और स्कॉट हिपवेल। रेचल को लगता है कि इनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है, शायद वैसी जैसी कभी उसकी अपनी थी।
ओ, और विडम्बना ये कि उनका घर उसी गली में है जहां रेचल पहले रहती थी।
बिल्कुल, जहां पहले वो अपने पति टॉम के साथ रहती थी और जहां अब टॉम अपनी नई पत्नी एना और उनकी बेटी के साथ रहता है। ये नज़दीकी रेचल के लिए बहुत तकलीफ देह है, जाहिर है।
हाँ, ये परफेक्ट दिखने वाले जीवन का भ्रम, यही कहानी की शुरुआत है। पर ये भ्रम ज्यादा देर टिकता नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सुबह रेचल ट्रेन से कुछ ऐसा देख लेती है जो उसके इस बुने हुए सपने को तोड़ देता है।
क्या देखती है वो?
वो देखती है कि जेस यानी मेगन अपनी बालकनी पर किसी और आदमी को चूम रही है। ये रेचल के लिए एक शॉक जैसा है। वो आदर्श तस्वीर टूट जाती है।
और फिर
कुछ ही दिनों बाद खबर आती है कि मेगन हिपवेल लापता हो गई है।
ओहो,
यहीं से कहानी असल में शुरू होती है।
हाँ, यहीं से रेचल की जिंदगी का ट्रैक बिल्कुल बदल जाता है।
मेगन का लापता होना उसे अंदर तक हिला देता है, और फिर उसे याद आता है बहुत धुंधला सा, शराब के नशे में डूबा हुआ, कि जिस रात मेगन गायब हुई वो खुद भी उसी इलाके में थी।
क्या? वो वहां क्या कर रही थी?
उसे ठीक से याद नहीं। अगली सुबह वो उठी थी तो सिर पर चोट थी, कपड़ों पर मिट्टी, और जहन में बस डर और अधूरी हिंसक सी यादें। उसे लगता है पास के कंडा पास में उसने कुछ देखा था, कुछ बहुत जरूरी, पर क्या? याददाश्त साथ नहीं दे रही।
बाप रे।
और यही उपन्यास का वो केंद्रीय सवाल खड़ा होता है ना, एक उलझी हुई पहेली। बिल्कुल, मेगन हिपवेल के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो जिंदा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेचल, जिसकी याददाश्त पर भरोसा नहीं, जो खुद इतनी टूटी हुई है, क्या वो अपनी इन बिखरी यादों के सहारे सच तक पहुंच सकती है?
या फिर इस मामले में पढ़कर वो खुद ही फंस जाएगी, शायद मुख्य संदिग्ध बन जाए। ये सवाल हमें किरदारों की जटिल दुनिया में ले जाते हैं। सबसे पहले तो रेचल ही है।
हाँ, रेचल, जैसा हमने कहा, वो कहानी की मुख्य आवाज है, पर एक ऐसी आवाज जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अकेली, बेरोजगार, शराबी, अपने अतीत के बोझ तले दबी हुई, असफल शादी, बच्चा न होने का दुख,
और वो ब्लैकआउट्स, शराब की वजह से उसकी यादों में खालीपन है।
हाँ, और उसका पूर्व पति टॉम, उसने इन खाली जगहों को उसकी कथित बुरी हरकतों की कहानियों से भर दिया है। जिससे रेचल खुद पर ही शक करने लगती है। शर्मिंदगी और आत्मघृणा ये उसकी पहचान बन गई हैं।
तो रेचल का सफर एक तरह से अंधेरे से रोशनी की तरफ है, हालांकि रास्ता आसान नहीं होगा।
किरदार बनने को मजबूर होती है, भले ही शुरुआत में उसकी कोशिशें अजीब हों, भटकी हुई हों।
उसका संघर्ष सिर्फ केस सुलझाना नहीं है, बल्कि अपने अतीत को भी सुलझाना है, उन यादों को सच से अलग करना है जिन्हें तोड़ा मरोड़ा गया है।
सही कहा, ये आत्मदया और नशे की गिरफ्त से निकलकर अपनी आवाज, अपनी सच्चाई को फिर से पाने की लड़ाई है। और अंत में उसे ये भयानक एहसास होता है कि उसका असली दुश्मन शराब नहीं थी, बल्कि वो इंसान था जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया। दूसरी अहम किरदार है मेगन हिपवेल, वही आदर्श महिला जिसे रेचल ट्रेन से देखती थी।
हाँ, उसकी कहानी कैसे सामने आती है?
उसकी कहानी फ्लैशबैक में पता चलती है, उसके लापता होने से पहले के दिनों की। बाहर से उसकी जिंदगी भले ही आकर्षक लगे, हैंडसम पति स्कॉट जो काफी प्रोटेक्टिव लगता है, लेकिन अंदर अंदर एक बेचैन दुखी आत्मा है।
अच्छा, क्यों?
वो एक पुराने गास के बूझ तले दबी है, बचपन में हुई एक दुखद घटना, अपने छोटे भाई की मौत, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती है, और वो इस उपनगरीय जीवन की एक रास्ता से भी ऊब चुकी है।
तो वो क्या करती है?
वो रिश्तों में, अफेयर्स में, शायद कोई रोमांच, कोई पहचान, या बस भागने का रास्ता खोज रही है।
मेगन का किरदार दिखाता है कि कैसे अतीत के घाव पीछा नहीं छोड़ते, जो बाहर से दिखता है और जो अंदर होता है उसमें कितना फर्क हो सकता है।
बिल्कुल, उसकी कहानी उपन्यास का रहस्य तो है ही, पर साथ ही एक मार्मिक पड़ताल भी है कि कैसे लोग मुखौटे पहन लेते हैं। अंदर से वो बस चाहती है कि कोई उसे देखे, समझे। उसका दुख कहानी को गहराई देता है।
और तीसरी आवाज, वो एना वॉटसन है, टॉम की नई पत्नी।
हाँ, एना, वो रेचल की पुरानी जिंदगी में रहती है, रेचल के एक्स हस्बैंड के साथ। शुरुआत में वो ऐसी लगती है जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो, पर उसकी कहानी भी असुरक्षाओं और डर से भरी है।
उसे रेचल से डर लगता है।
रेचल के बार बार आने जाने, फोन कॉल से वो परेशान है। उसे लगता है रेचल उसकी खुशहाल जिंदगी तबाह करना चाहती है। वो एक नई माँ भी है और मातृत्व की चुनौतियों से भी जूझ रही है।
तो ऐना का किरदार दिखाता है कि जीत कर भी सब आसान नहीं होता। उसका मकसद अपने परफेक्ट परिवार को बचाना है।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसका डर सिर्फ रेचल से नहीं रहता, उसके मन में अपने पति टॉम को लेकर भी शक पैदा होने लगता है।
टॉम को लेकर? क्यों?
टॉम के छोटे छोटे झूठ, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी रहस्यमयी गैर हाजिरियां, ये सब ऐना को बेचैन करने लगती हैं। उसकी यात्रा एक भयानक जागृति की ओर ले जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस खतरे से वो बाहर डर रही थी,
वो तो घर के अंदर ही था, उसके साथ। उसका डर सही था, बस दुश्मन बदल गया।
बिल्कुल, और इन तीनों महिलाओं के जीवन के केंद्र में है टॉम वॉटसन, रेचल का पूर्व पति, ऐना का वर्तमान पति, उपन्यास का असली विलेन।
लेकिन उसकी असलियत तो काफी देर में सामने आती है ना? शुरुआत में तो वो बड़ा सिंपैथेटिक लगता है।
हाँ, शुरुआत में वो एक पीड़ित पति जैसा लगता है, बेचारा, जिसे अपनी शराबी एक्स वाइफ से निपटना पड़ रहा है। वो आकर्षक है, कामयाब दिखता है, सहानुभूति हासिल करने में माहिर।
टॉम का किरदार ये गैसलाइटिंग और मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक क्लासिक उदाहरण है। उसका असली मकसद है कंट्रोल, दूसरों पर, खासकर महिलाओं पर।
सही, वो एक नंबर का झूठा है, अपनी कमियों को छुपाने और दूसरों को दोषी ठहराने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पाठक रेचल और ऐना के साथ उसके झूठ के जाल को परत दर परत उधेड़ते हैं,
और उसके आकर्षक मुखौटे के पीछे का क्रूर, आत्ममुग्ध और हिंसक आदमी सामने आता है। वो एक ऐसा अंधेरा केंद्र है जिसके चारों ओर ये तीनों महिलाएं घूमती हैं, और उनके दुखों का कारण भी वही बनता है।
हाँ, और संक्षेप में, स्कॉट हिपवेल, मेगन का पति, उसका भी जिक्र जरूरी है। उसका गुस्सैल स्वभाव और मेगन को लेकर उसका पजेसिव रवैया उसे शुरुआत में शक के दायरे में लाता है।
उसका किरदार भी यही दिखाता है कि कैसे रिश्ते में कंट्रोल की कोशिशें कितनी खतरनाक हो सकती हैं।
बिल्कुल।
तो इन किरदारों के जरिए कहानी आगे बढ़ती है, देखते हैं ये पहेली सुलझती कैसे।
हाँ, तो कहानी का पहला हिस्सा जो है वो मेगन के लापता होने और रेचल के खुद को इस जांच में झोंक देने पर फोकस करता है। रेचल अपराध बोध और शायद जिंदगी में कोई मकसद पाने की चाहत में पुलिस के पास जाती है,
पर पुलिस उसकी बात नहीं मानती होगी नशे की हालत में।
बिल्कुल नहीं मानती, उसे गंभीरता से नहीं लेती। फिर वो झूठ बोलकर स्कॉट से मिलती है, खुद को मेगन की दोस्त बताकर। वो मेगन के थेरेपिस्ट डॉक्टर कमाल अब्दिक तक भी पहुंच जाती है।
वही जिसे उसने बेल्कनी पर देखा था?
हाँ, वही। और वो अब मुख्य संदिग्ध बन जाता है। रेचल की ये जो अनाड़ी जासूसी है, ये उसे खतरनाक स्थितियों में डाल देती है।
यहाँ हॉकिंस बड़ी खूबी से हमें रेचल के नजरिए से दुनिया दिखाती हैं। धुंधली, अविश्वसनीय, हम वही जानते हैं जो रेचल जानती है, या जो उसे लगता है कि वो जानती है।
सही है, उसकी याददाश्त पर भरोसा नहीं, इसलिए पाठक भी लगातार शक में रहता है। क्या रेचल सच के करीब है, या बस अपनी कल्पनाओं और डर के जाल में उलझ रही है?
ये अनिश्चितता ही कहानी को बांधे रखती है।
कहानी के दूसरे हिस्से में क्या होता है?
रहस्य और गहराता है।
हाँ, और गहराता है। रेचल की जांच एक जुनून बन जाती है। स्कॉट के साथ उसकी मुलाकातें तनाव भरी होती हैं। उधर टॉम, वो लगातार रेचल को गैसलाइट करता रहता है। उसे यकीन दिलाता है कि नशे में वो हिंसक हो जाती थी, कि उसकी याददाश्त भरोसे के काबिल नहीं।
इससे तो रेचल का खुद पर शक और बढ़ता होगा।
बिल्कुल। इसी बीच मेगन के फ्लैशबैक हमें उसके अतीत के दर्द, स्कॉट के साथ उसके तनाव भरे रिश्ते और उसके अफेयर्स के बारे में बताते हैं। इनमें एक अफेयर ऐसा भी था जो बहुत खतरनाक साबित हुआ।
और एना, क्या उसे टॉम पर शक होने लगता है?
हाँ, एना की कहानी में भी टॉम को लेकर शक गहराने लगता है। उसके झूठ, उसकी चिड़चिड़ाहट, ये सब एना को सोचने पर मजबूर करते हैं।
तो कहानी कई परतों में खुल रही है। तीनों महिलाओं की आवाजें हमें अलग अलग टुकड़े दे रही हैं, पर पूरी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है।
हाँ, पाठक के तौर पर हम शायद हर किरदार से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमें तीनों के विचार पता हैं। लेकिन फिर भी सच पकड़ से बाहर रहता है। हॉकिंस जानबूझकर हमें अंधेरे में रखती हैं, तनाव धीरे धीरे बढ़ाती हैं।
ये नैरेटिव स्ट्रक्चर का बेहतरीन इस्तेमाल है। तो तीसरा हिस्सा रहस्योद्घाटन और टकराव का, असली मोड़ कब आता है?
असली मोड़ तब आता है जब रेचल की मुलाकात इत्तेफाक से टॉम के पुराने बॉस की पत्नी से होती है, और उसे पता चलता है कि टॉम को नौकरी से हाल ही में नहीं बल्कि सालों पहले निकाला गया था।
क्या, सालों पहले?
हाँ,
और वजह?
ऑफिस में अफेयर के चलते। ये वही बहाना था जो टॉम ने रेचल को अपनी नौकरी जाने के बारे में बताया था। ये जानकारी रेचल के दिमाग में मतलब बिजली की तरह कौंधती है।
उसे समझ आता है कि टॉम का झूठ कितना गहरा था।
हाँ, उसने सिर्फ नौकरी के बारे में झूठ नहीं बोला था, उसने रेचल की पूरी पहचान को ही मैनिपुलेट किया था।
यही वो पल है जब रेचल को गैसलाइटिंग का पूरा सच समझ आता है। उसे याद आता है कि कैसे टॉम उसे बताता था कि नशे में वो कितनी भयानक हो जाती है।
हाँ, कैसे वो चीजें तोड़ती है, लोगों को चोट पहुंचाती है, और रेचल ने उस पर यकीन कर लिया था। अब उसे समझ आता है कि ये सब टॉम की गढ़ी हुई कहानियां थीं,
ताकि वो रेचल को कंट्रोल कर सके, उसे दोषी महसूस करा सके और खुद के गलत कामों पर पर्दा डाल सके। ये एहसास रेचल के लिए मुक्ति की पहली सीढ़ी है।
बिल्कुल। और इसी मानसिक स्पष्टता के साथ मेगन की लापता होने वाली रात की भूली हुई यादें भी साफ होने लगती हैं। उसे याद आता है उसने अंडरपास में मेगन को टॉम के साथ बहस करते देखा था।
ओह, बहस क्यों?
मेगन टॉम के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और शायद उसे ये रिश्ता पब्लिक करने की धमकी दे रही थी। टॉम गुस्से में था। रेचल जो ये सब छिपकर देख रही थी, उसने शायद बीच में पड़ने की कोशिश की।
और टॉम ने?
टॉम ने गुस्से में उसे मारा, जिससे वो गिर गई। फिर टॉम ने उसे कार में डालकर स्टेशन के पास छोड़ दिया, और इसके बाद उसने मेगन को मार डाला।
बाप रे, ये खुलासा तो चौंकाने वाला है। खलनायक वो नहीं जिस पर शक था, बल्कि वो जो सबसे भरोसेमंद लग रहा था।
हाँ, आप कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, चरमोत्कर्ष में। रेचल सच का पता चलते ही एना को वार्न करने के लिए टॉम के घर भागती है।
लेकिन एना को भी तब तक सच पता चल चुका होता है।
हाँ, उसे टॉम का छुपा हुआ फोन मिल चुका होता है, जिसमें उसके कई राज थे। भयानक सच एना के सामने भी आ चुका होता है। जब टॉम घर लौटता है, तो उसका सामना इन दोनों महिलाओं से होता है।
और फिर
उसका वो आकर्षक मुखौटा उतर जाता है। वो कबूल करता है कि कैसे उसने गुस्से में मेगन को मारा और उसकी लाश पास के जंगल में दबा दी। फिर वो रेचल पर हमला करता है।
लेकिन इस बार एना बीच में आ जाती है।
हाँ, एना बीच में आ जाती है। जैसे ही टॉम फिर रेचल पर झपटता है, रेचल की नजर काउंटर पर रखे कॉकस्क्रू पर पड़ती है। वही कॉकस्क्रू जिसका इस्तेमाल टॉम कभी उनके अच्छे दिनों में वाइन खोलने के लिए करता था।
और वो, हाँ,
आत्मरक्षा और शायद सालों के दबे हुए गुस्से और अपमान से मुक्ति पाने के एक निर्णायक पल में रेचल वो कॉकस्क्रू टॉम की गर्दन में घोंप देती है।
ये अंत काफी हिंसक है, लेकिन शायद रेचल के लिए एक तरह की मुक्ति भी है। सालों की प्रताड़ना के बाद वो आखिरकार अपने उत्पीड़क के खिलाफ खड़ी होती है।
हाँ, अंत में पुलिस आती है एना खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए। रेचल की आत्मरक्षा की कहानी की पुष्टि करती है।
और उपन्यास का अंत कैसे होता है? रेचल का क्या होता है?
उपन्यास का अंत रेचल के दोबारा ट्रेन में बैठने से होता है, लेकिन इस बार वो खिड़की से बाहर झांककर दूसरों की जिंदगियों के सपने नहीं बुन रही। वो शांत है, अपने जीवन में वापस लौट रही है। घाव अभी भरे नहीं है जाहिर है, लेकिन टॉम के द्वारा बनाया गया वो भ्रम का जाल वो टूट चुका है। सालों बाद वो आजाद महसूस कर रही है।
ये कहानी कई गहरे विषयों को छूती है, सबसे बड़ा तो शायद यही है, याददाश्त और सच्चाई का अविश्वसनीय होना।
बिल्कुल, रेचल के याददाश्त शराब के कारण खंडित है, पर उपन्यास ये भी दिखाता है कि हम सब अपनी यादों को कैसे चुनते हैं, बदलते हैं या दबा देते हैं। मेगन अपने अतीत को दबाती है, एना सच देखना नहीं चाहती,
और टॉम दूसरों की यादों को ही बदल देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम सच मानते हैं वो कितना सब्जेक्टिव हो सकता है।
सही, और इसी से जुड़ा है गैसलाइटिंग और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार का मुद्दा। टॉम जिस तरह रेचल को यकीन दिलाता है कि वो पागल है, वो दिखाता है कि कैसे इमोशनल अब्यूज किसी इंसान के कॉन्फिडेंस और उसकी पहचान को तबाह कर सकता है।
हाँ, उपन्यास इस अदृश्य हिंसा को बहुत प्रभावी ढंग से सामने लाता है। रेचल का वो एहसास कि उसने मुझे बताया था कि मैं हिंसक हूँ, एक राक्षस, और मैंने उस पर विश्वास किया, ये गैसलाइटिंग की भयावहता दिखाता है।
फिर वो वॉयरिज्म, दूसरों की जिंदगी में ताक झांक का पहलू भी है। रेचल बाहरी चमक देखकर मेगन और स्कॉट के लिए एक काल्पनिक दुनिया बना लेती है।
उपन्यास दिखाता है कि ये कितना भ्रामक हो सकता है। जो बाहर से परफेक्ट दिखता है जरूरी नहीं कि अंदर से वैसा ही हो। ये आजकल सोशल मीडिया के दौर में और भी ज्यादा रिलेटेबल लगता है ना।
हाँ बिल्कुल, जहां हम अक्सर दूसरों की जिंदगी की सिर्फ अच्छी तस्वीरें देखकर अपनी धारणाएं बना लेते हैं। और एक और महत्वपूर्ण विषय है महिला पात्रों का ट्रॉमा, और अंत में उनकी वो अप्रत्याशित एकजुटता।
हाँ, रेचल, मेगन, एना तीनों अलग अलग तरह के दर से गुजर रही हैं। बांझपन, अपमानजनक रिश्ता, अतीत का बोझ, असुरक्षा, मातृत्व का दबाव।
ज्यादातर कहानी में वो एक दूसरे को दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी समझती हैं, लेकिन अंत में ये एहसास कि वो तीनों एक ही आदमी के धोखे और क्रूरता का शिकार हुई हैं उन्हें एक अजीब से बंधन में बांध देता है।
टॉम के खिलाफ उनका वो अंतिम एक्शन भले ही दुखद हो, एक तरह की सिस्टरहुड या नारीवादी एकजुटता का प्रतीक बन जाता है।
हाँ, और आखिर में नशे की लत और पहचान का सवाल। रेचल की शराबखोरी सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है, ये उसके चरित्र का अहम हिस्सा है।
ये उसकी अविश्वसनीयता का कारण है, वो हथियार है जिसे टॉम उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है, और वो धुंध है जिससे उसे सच ढूंढने के लिए लड़ना पड़ता है।
बिल्कुल, उसका रहस्य सुलझाने का सफर और नशे से बाहर आने का सफर, वो साथ साथ चलते हैं। अपनी यादों को वापस पाना उसके लिए अपनी पहचान और अपनी जिंदगी पर काबू पाने जैसा है।
शैली की बात करें तो तीन अलग अलग किरदारों के नजरिए से कहानी कहना, ये मल्टीपल फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव्स हॉकिंस का सबसे मजबूत हथियार है।
हाँ, रेचल और एना वर्तमान में कहानी कह रही हैं, जबकि मेगन की कहानी अतीत से हमें मिलती है। ये तकनीक रहस्य को बनाए रखने में मदद करती है और पाठक को लगातार उलझाए रखती है। हम किसी एक किरदार पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते।
और सिंबोलिज्म भी है, ट्रेन का प्रतीक कितना शक्तिशाली है।
हाँ, ट्रेन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं, वो रेचल की अटकी हुई बीच की अवस्था का प्रतीक है। वो न पूरी तरह अतीत में है, न वर्तमान में जी पा रही है, वो जिंदगी को बस चलते हुए देख रही है, उसमें शामिल नहीं हो पा रही।
उसे ट्रेन से उतरना ही पड़ता है, सचमुच भी और लाक्षणिक रूप से भी, ताकि वो सच तक पहुंच सके और अपनी जिंदगी वापस पा सके।
बिल्कुल, और अंडरपास भी, एक अंधेरी छिपी हुई जगह जहां सच दफन है और जहां हिंसा होती है।
तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें क्या सिखाती है या आज भी क्यों मायने रखती है?
मेरे ख्याल से ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खतरा अक्सर जानी पहचानी जगहों और रिश्तों में छिपा हो सकता है। ये दिखावे के पीछे की सच्चाई, याददाश्त की नाजुकता और रिश्तों में पावर डायनेमिक्स पर एक तीखी टिप्पणी है।
बिल्कुल, और ये भी कि कैसे सच तक पहुंचना, खासकर जब उसे जानबूझकर दबाया या तोड़ा मरोड़ा गया हो, खुद को फिर से पाने की एक मुश्किल लेकिन जरूरी यात्रा हो सकती है। ये कहानी अपनी जटिलता और मनोवैज्ञानिक गहराई के कारण आज भी पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है, इसमें कोई शक नहीं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए कलेक्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।